ओम शांति। आज का विषय है आध्यात्म की जादुई छड़ी अनुशासन। परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो इस संसार में आकर के एक साथ बहुत सारे महान कार्य करते हैं और उन महान कार्यों में से एक विशेष कार्य है कि सर्व को अनुशासन का पाठ पढ़ाना, एक अनुशासित समाज की स्थापना करना। क्योंकि जहां अनुशासन है वहां ही जीवन सुखी और श्रेष्ठ है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय संसार में जो भी समस्याएं हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में है, परिवार में है, समाज में है या देश के अंदर हैं, उन सभी समस्याओं का मूल कारण है कि सभी वर्तमान समय अनुशासन को त्याग कर अनुशासनहीनता में चल रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा वर्तमान समय एक ऐसी जादुई छड़ी लेकर के इस सृष्टि पर पधारते हैं जिसके माध्यम से एक श्रेष्ठ सभ्य और सुसंस्कारित सृष्टि की स्थापना होती है। तो वह जादुई छड़ी कौन सी है? अनुशासन। तो अनुशासन अर्थात क्या? अनुशासन किसे कहेंगे? जो भी नियम मर्यादाएं बनी हुई है उनको पालन करना, उनको फॉलो करना, और जो संविधान बने हुए हैं उनको फॉलो करना, उनके अनुसार चलना, और क्या कहेंगे? डिसिप्लिन, आत्मा का स्वयं के ऊपर शासन। और अनुशासन अर्थात शासन के अधीन होकर चलना। जो राजा के जो नियम है, मर्यादाएं हैं, कानून है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको फॉलो करना, उनको अनुसरण करना, उनके अनुसार चलना। तो जो आत्मा के गुण हैं, जो आत्मा की शक्तियां हैं, उनके अनुसार चलना। जो परिवार के नियम मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को फॉलो करना। जो जिस समाज में रहते हैं उस समाज के हर एक की अपने अपने नियम होते हैं उनको फॉलो करना। जो जिस देश में रहते हैं उस देश के अपने कानून होते हैं उनको फॉलो करना, अर्थात अनुशासन में चलना। तो अनुशासन जीवन में क्यों जरूरी है, उसको हम एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। एक पिता अपने बच्चे के साथ पतंग उड़ाने जाता है। तो जब पिता पतंग उड़ा रहा होता है उस समय बच्चा उस पतंग को बहुत ही उत्सुकता से देखता है कि पतंग आसमान की ओर बहुत तेजी से जा रही है। कुछ समय के बाद देखता है कि पतंग जिस गति से आगे बढ़नी चाहिए उस गति से आगे नहीं जा रही है, बीच बीच में हिलती डोलती भी है। तो बच्चा अपने पिता को बोलता है कि पापा, आपको मालूम है कि पतंग तेजी से आगे क्यों नहीं जा रही है, इसका क्या कारण है? तो पिता ने बच्चे को कहा कि आपको मालूम हो तो बताइएगा क्या कारण है। तो बच्चा कहता है कि आपके हाथ में जो धागा है ना, ये उसके लिए बाधा है, इसको यदि आप तोड़ देंगे तो पतंग बहुत तेजी से आगे जाएगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा, जो आप कहते हैं वही मैं करता हूं। तो पिता ने उस धागे को तोड़ दिया। तो पतंग कुछ समय के लिए तो तेजी से आगे बढ़ी और बच्चा उसको देख के बहुत खुश भी हुआ, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, पतंग लड़खड़ाती हुई, हिलती डोलती, धराशायी हो जाती है। तो मानव जीवन में भी अनुशासन वो डोर है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ स्थिर रह सकते हैं। यदि कोई अनुशासन को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो अल्पकाल के लिए, टेम्परेरी। तो जीवन में हम चाहते हैं कि स्थायी उन्नति हो, सदा काल की हमारी उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, उसके लिए अनुशासन अति आवश्यक है। अनुशासन के बिना हमारा भी वही हाल होगा जो उस पतंग का हुआ। थोड़े समय के लिए हम अनुभव करेंगे कि हम आगे बढ़ रहे, लेकिन कुछ समय के बाद फिर जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी वहां पर ही पहुंच जाएंगे। तो संसार में भी हम देखते हैं कि अनुशासन का पाठ तो सभी पढ़ाते हैं। बचपन में बच्चे को माँ बाप अनुशासन सिखाते हैं कि कैसे आपको सबके साथ व्यवहार करना है, बात करनी है। यदि माँ बाप अनुशासन में नहीं चलते हैं तो बच्चा उसको फॉलो नहीं करता है, वो भी फिर मनमानी करता है। स्कूलों में भी विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है कि आपको किस प्रकार से एक दो के संबंध संपर्क में आना है, कैसे क्लास में बैठना है, कैसे बर्ताव करना है, किसी से कोई चीज चाहिए तो उसको बिना पूछे नहीं लेना है, उससे पूछ करके ही लेना है। तो स्कूलों में भी अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन वहां भी वही बात लागू होती है कि यदि शिक्षक अनुशासित होकर चलते हैं तो बच्चे स्वतः ही वो पाठ पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि टीचर में कोई अनुशासन यदि दिखाई नहीं देता है तो विद्यार्थी उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसी प्रकार से संसार में जो भी संगठन बने हुए हैं वहां भी अनुशासन का अपना एक विशेष महत्व होता है। अनुशासन के बिना कोई भी संगठन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है, और इसका विशेष उदाहरण तो हम सभी आर्मी में देखते हैं कि वहां अनुशासन का कितना बड़ा महत्व है। आर्मी की जो पावर है, जो सफलता है, वो अनुशासन पर ही डिपेंड करती है। तो मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। तो सिर्फ व्यक्ति के जीवन में ही अनुशासन नहीं, लेकिन प्रकृति भी यदि अनुशासन में रहती है तो संसार ये कितना श्रेष्ठ और सुखमय होता है। यदि प्रकृति अनुशासन तोड़ती है तो उस समय क्या होता है, संसार में सारे अस्त व्यस्त हो जाता, संसार पूरा अव्यवस्थित हो जाता है। यदि सूरज और चांद अपना अनुशासन तोड़ें एक दिन के लिए सही, तो संसार क्या बन जाएगा, संसार की जो भी व्यवस्था है वो सब डगमगा जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सागर भी अनुशासन में है तो उसके किनारे बसे हुए सब नगर महानगर कितना उन्नति को पाते हैं, कितना विकास को पाते हैं। लेकिन सागर यदि अनुशासन तोड़ दे तो जो विकास है वो विनाश में बदल जाएगा। जो भी नदियां हैं उन नदियों के किनारे जो नगर महानगर बसे हुए वो भी नदी के अनुशासन के कारण ही विकास को प्राप्त हो रहे हैं। यदि नदी अपना अनुशासन तोड़ दे तो वो शमशान का रूप ले लेंगे। तो प्राचीन काल में जो भी सभ्यताएं थी वो सभी सभ्यताएं कहां फली फूली, नदियों किनारे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सतयुग में जो भी देवताएं रहेंगे, जो देवी संस्कृति होगी वो सब नदियों के कंठे पर होगी, ना पहाड़ों पर और ना ही समुद्र के किनारे। लेकिन तब तक जब तक वो अनुशासन में है, यदि नदी अपना अनुशासन तोड़ दे तो जो वहां की समृद्धि है, खुशहाली है, वो सब समाप्त हो जाती है। अर्थात अनुशासन संसार में आवश्यक है। अनुशासन के बिना ये संसार अव्यवस्थित हो जाएगा, फिर ना वहां सुख होगा, ना शांति होगी, ना खुशहाली होगी और ना ही समृद्धि होगी। तो अनुशासन जो है वो एक आधार है। जैसे कोई मकान है वो बिना आधार के नहीं बन सकता है। यदि कोई मकान को रेत के ढेर पर बनाना चाहे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो धराशायी हो जाएगा। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से तब दौड़ती है जब वो पटरी पर होती है। यदि पटरी से ट्रेन उतर जाए तो मंजिल तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। तो अनुशासन जो है वो एक बहुत आवश्यक है। अनुशासन जीवन के लिए राजपथ की तरह है। जैसे कोई कहीं भी जाते हैं तो जो हाईवे है वो सहज ही मंजिल पर पहुंचा देते हैं। यदि कोई हाईवे को छोड़कर जो साइड में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, गलियां होती हैं, उनसे निकल पड़े तो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, फिर वापस लौटकर उसको जहां शुरू हुआ वहां से चलना पड़ेगा। अर्थात जीवन में अनुशासन अति आवश्यक है, अनुशासन के बिना यह जीवन संभव नहीं है। तो संसार में तो अनुशासन चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में भी अनुशासन अति आवश्यक है। तो ब्राह्मण जीवन में अनुशासन एक जादुई छड़ी का काम करता है, कैसे करता है उसके बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में अनुशासन अर्थात क्या, जो ब्राह्मण जीवन के नियम बने हुए हैं, मर्यादाएं बनी हुई हैं, जो ब्राह्मण जीवन के कोड ऑफ कंडक्ट है, हाँ जी, जो ब्राह्मण जीवन की आचार संहिता है उसको फॉलो करना, उसका अनुसरण करना। तो ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से ऐसे नियम बने हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना है, हाँ जी, हाँ, उनको उन पर चलना, अनुसरण का अनुगमन करना। तो पहली बात है दिनचर्या। तो दिनचर्या में विशेष पांच बातें जिसको हम सभी फॉलो करते हैं और उसको और ही दृढ़ता के साथ उस पर चलना है। तो दिनचर्या में पांच बातें कौन कौन सी, पहला अमृत वेला। तो अमृत वेला का जो महत्व है उस महत्व को सामने रखते हुए उसको हमें अप्लाई करना है, क्योंकि अमृत वेले का समय जो है वो सबसे मूल्यवान समय है। तो इस समय क्या करना है, पहले उठना है, और उठना भी कैसे है, उमंग उत्साह से, लकीर के फकीर बनकर नहीं, एक दृढ़ता के साथ, विशेष उमंग उत्साह के साथ, और उठ करके अपने आप को चार्ज करना है। क्योंकि इस समय यदि हम स्वयं को चार्ज करते हैं, अपने आप को विशेष अनुभवों से संपन्न बनाते हैं, तो बाकी सारे दिन की जो दिनचर्या है उस पर हम सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो अमृत वेले का समय है उस पर विशेष अटेंशन देने की जरूरत है, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम पढ़ाई, मुरली, क्योंकि मुरली जो है ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। जैसे कोई भोजन न करे तो उसका क्या हाल होता है वो हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से आत्मा को सशक्त बनाने के लिए जो बाबा डेली पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो उस पढ़ाई में डेली अनेक भिन्न भिन्न पॉइंट्स देते हैं, उसको पढ़ करके उसको याद रख करके उस पर मनन चिंतन करना, उस पर अमल करना, ये बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अनुशासन को तोड़ते हैं। तो ब्राह्मण जीवन के अनुशासन में ये विशेष बात है कि सभी ब्राह्मण आत्माओं को डेली क्लास में आना है और मुरली सुननी है, मुरली पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तीसरी बात, ट्रैफिक कंट्रोल। इस मधुबन में या ब्राह्मण संसार में जो ट्रैफिक कंट्रोल बने हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ट्रैफिक कंट्रोल ना हो तो दिनचर्या में हम कार व्यवहार में आते आते, कार्य करते करते कब कहां से कहां पहुंच जाते हैं उसके बारे में पता नहीं पड़ता है, एहसास भी नहीं होता है। फिर जब शाम को योग के समय अपने बारे में देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमने क्या क्या गलती की हुई है, जो हमने सुबह लक्ष्य लिया था उससे हम भटक चुके हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो हमें याद दिलाता है कि हमें क्या करना है। अर्थात जो हमने अमृत वेले में अनुभव किया उस अनुभव को हमें उस समय विशेष करके इमर्ज करके उसको अनुभव करने का हमें वो समय मिलता है। साथ साथ जो हमने क्लास में मुरली सुनी, मुरली के पॉइंट्स को नोट किया, उसको भी याद करने का विशेष वो समय होता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय जो हमने अमृत वेले में विशेष अनुभव किया, कोई भी शक्ति का, कोई भी गुण का, या कोई विशेष अनुभूति, उस समय हम उस अनुभूति को इमर्ज करके उसको और ही पक्का करते हैं। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये हमारे लिए विशेष एक अनुशासन है कि हम उस समय उस पर अटेंशन दे करके उसको अप्लाई करें। अगली बार दिनचर्या में सेवा तो करनी है, नुमा शाम का योग, शाम का योग, तो शाम के योग के समय भी हमें विशेष अटेंशन देकर के उसको अप्लाई करना है। यदि हम अमृत वेला करते हैं उस समय अच्छी अनुभूति करते हैं, लेकिन शाम के योग के समय हम उसको रिवाइज नहीं करते, उसको पुनः उसको अनुभव नहीं करते हैं, तो वो पक्का नहीं होता है। इसलिए नुमा शाम के योग का समय भी अति आवश्यक है। तो जो हमने सवेरे अनुभव किया जिस शक्ति का, जिस गुण का, नुमा शाम के समय भी हमें उस अनुभव को और आगे बढ़ाना है। इसलिए इस बात को भी हमें फॉलो करना है कि शाम का योग में भी नियमित रूप से, विधिवत रूप से उस पर हम चलते रहें। और पांचवी बात, चार्ट, क्योंकि चार्ट जो है वो हमारे लिए एक दर्पण का काम करता है। जैसे यदि दर्पण ना हो तो हम अपने आप को देख नहीं सकेंगे कि हमारा मेकअप है या नहीं है, हमारे में क्या कमी है, कोई दाग है या नहीं है। इसी प्रकार से जो चार्ट है वो हमारे लिए एक दर्पण का काम करता है कि हमने सारे दिन में क्या किया, श्रीमत का पालन किया या नहीं किया, कोई आज्ञा का उल्लंघन किया या नहीं किया, हमने सात दिन में क्या क्या अभ्यास किया, क्या क्या अनुभव किया, किसको दुख तो नहीं दिया। और चार्ट में क्या क्या लिखते हैं, श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं किया, कितना समय याद किया, टाइम वेस्ट तो नहीं किया, टाइम सफल किया तो कहां सफल किया। तो शाम जो रात्रि का हमारा चार्ट है वो आवश्यक है। तो यदि हम इन पांच बातों पर विशेष अमल करते हैं तो हमारे लिए जो ब्राह्मण जीवन में जो हम उन्नति चाहते हैं उसके लिए ये विशेष एक जादुई की छड़ी का काम करेगा। तो पांच बातें कौन कौन से, अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का योग और चार्ट। तो इन पांचों ही बातों पर हमें विशेष अटेंशन देना है। और दूसरी बात है अनुशासन के लिए भोजन। तो भोजन जो है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक साधन है, बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है। तो जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है उसी प्रकार से भोजन के लिए अनुशासन भी आवश्यक है। भोजन कब लेना है, कितना लेना है, लेना है नहीं लेना है, उसके लिए हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसको अनुशासन के रूप में हमें अप्लाई करना है। तो दूसरी बात है भोजन, भोजन के प्रति हमारा पूरा अनुशासन हो। यदि भोजन के प्रति हमारा अनुशासन नहीं है तो हम इस जीवन में निरंतर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बार बार शरीर बीमार होगा तो मन भी अपसेट होगा, डिस्टर्ब होगा, हाँ जी, हाँ, फिर प्रोत्साहन नहीं कर पाएंगे, योग भी नहीं करेंगे। इसलिए दूसरी बात जो है वो भोजन पर हमारा अनुशासन जरूरी है। और तीसरी बात है जो साइंस के साधन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, उन पर भी हमारा अनुशासन होना जरूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के हम उसमें यदि इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा समय और हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है उसके बारे में हमें एहसास भी नहीं होता है। तो संगम युग के समय पर जो साइंस के साधन है वो हमारे लिए वरदान के रूप में भी साबित हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए श्रापित होने के रूप में भी साबित हो सकते हैं। तो इस आध्यात्मिक जीवन में साइंस के साधनों पर भी हमारा अनुशासन होना जरूरी है, हमें उसको यूज करना है, लेकिन एक अनुशासन में रह करके साइंस के साधनों के माध्यम से हम इस पुरुषार्थ में, इस ब्राह्मण जीवन में हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। हाजी, यदि हमने उसको मिसयूज किया तो वो पतन के मार्ग पर ले जाने में भी काम करते हैं, तीव्र गति से वो भी। और चौथी बात है कि ब्राह्मण जीवन में जो मर्यादाएं हैं, अर्थात किसी के संबंध संपर्क में आते हुए हमें क्या करना है, यहाँ जी आत्मदृष्टि, हमारी दृष्टि कैसी हो? आत्मिक हो। दृष्टि में अनुशासन, ये दृष्टि में अनुशासन नहीं है तो बार बार अगर हमारी दृष्टि दहक होती है तो उससे क्या होगा, जो अंदर में पहले से जो गंदगी भरी हुई है वो इमर्ज होगी, क्योंकि आत्मा में आधे कल्प के संस्कार भरे हुए दहक दृष्टि के, अशुद्धि के, वो संस्कार बार बार इमर्ज होंगे। तो हम जीवन में जो बढ़ना चाहते हैं जिस गति से, उस गति से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आत्मिक दृष्टि का अनुशासन भी बहुत जरूरी है। सर्व के प्रति हमारा आत्मिक दृष्टि का भाव है। संसार में जो भी आत्माएं हैं सभी आत्माओं के प्रति आत्मिक दृष्टि हो। बाबा ने विशेष लास्ट मुरली में माताओं को कौन सी बात कही थी? लौकिक में रहते हुए सबके प्रति अलौकिक आत्मिक भाव हो, कि हम जिन आत्माओं के संबंध में हैं वो सभी आत्माएं हैं। उन हरेक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसके प्रति दैहिक भाव ना हो, दैहिक दृष्टि ना हो। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे संबंधी, क्योंकि जहां दैहिक दृष्टि है वहां पर सफलता नहीं है, वहां उन्नति नहीं है। तो आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि का अनुशासन। अगली बात है वाणी, वाणी में भी अनुशासन, क्योंकि वाणी से हम दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं, दूसरों में उमंग उत्साह भी बढ़ते हैं, तो वाणी से हम दूसरों को घायल भी करते हैं, दूसरों को गिराते भी है। तो वाणी क्या क्या काम करती है? दूसरों को ठेस पहुंचाती है, दूसरों के उमंग उत्साह को कम करती है, और क्या करती है वाणी, क्या करती है? तख्ते पर या फिर तखत पर चढ़ाती है। तखत अर्थात बाप दादा के दिल तख्त पर या विश्व के बादशाही के तख्त पर, और वाणी ही तख्ते पर अर्थात फांसी के तख्ते पर भी चढ़ाने के निमित्त बनती है। महाभारत का जो विशेष युद्ध हुआ वो भी किस कारण से हुआ? वाणी के कारण, व्यंग बाण के कारण। और वाणी जीवन में क्या करती है? वाणी से हम दूसरों को अपना बना भी सकते हैं। वाणी से दोस्त भी बनते हैं तो दुश्मन भी बन जाते हैं, और वाणी से दूसरों को वाणी से हमारे संबंध बिगड़ भी सकते हैं, तो वाणी से संबंध हमारे बनते भी हैं। यदि बोल मधुर हो तो उनसे संबंध बिगड़े हुए संबंध भी बन जाते हैं। यदि वाणी हमारी दूसरों को हर्ट फील करने वाली हो तो उनसे संबंध बिगड़ते भी हैं। और यदि हमारे बोल सही नहीं है तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है, बिगड़ सकता है। तो वाणी पर भी हमारा अनुशासन होना चाहिए, और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा अनुशासन जरूरी है। क्योंकि संगठन में क्या होता है, कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में एक थोड़ी कुछ समस्या खड़ी करते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में उन्नति में जो रुकावट है, लेकिन हमें हमेशा देखना है कि हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारे से ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे संगठन टूटे। यदि हमारे कारण से संगठन टूटता है तो उससे भी हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वो रुक जाता है, क्योंकि यदि हम उस कार्य के लिए निमित्त बनते हैं तो इससे एक तो भगवान से दुआएं नहीं मिलेंगी, और दूसरी बात परिवार से दुआएं नहीं मिलेंगी, ब्राह्मण आत्माओं से दुआएं नहीं मिलेंगी, और तीसरी बात हम स्वयं से भी असंतुष्ट रहेंगे। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें अनुशासन में रहना जरूरी है। सुनने का अनुशासन, वो क्या होता है? तो सुनने के लिए अनुशासन अर्थात जो बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ बातें हैं या जो मान ले अशुद्ध बातें हैं उन पर कंट्रोल हो, जिसको कहते हैं हियर नो विल, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, डू नो ईविल, थिंक नो ईविल। तो जो व्यर्थ बातें हैं उन पर हमारा अनुशासन हो, और हाँ व्यर्थ बोल से भी देश सर्विस हो जाती है। और कौन कौन सी बातें हैं ब्राह्मण जीवन में? एक विशेष बात है, ब्राह्मण संसार में संबंध संपर्क में आते हुए फैमिलियरिटी ना बढ़ जाए, क्यों कई बार ऐसा होता है कि हम संबंध संपर्क में आते हुए एक दूसरे से बहुत ही लाइटली हो जाते हैं, तो वो बाद में आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी में बदल जाता है, जो कि इस जीवन में पतन के मार्ग पर जाने का एक विशेष कारण बन जाता है। तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे संबंध संपर्क में आते हुए अनुशासन में रह करके ही मिलना है। साथ साथ एक विशेष बात है कि ब्राह्मण संसार में भाई किसी बहन के जीवन में या बहन किसी भाई के जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में उसका अंत पाने का पुरुषार्थ न करें, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक माया है। तो इस पर भी हमें विशेष अनुशासन रखना है, अनुशासन में रह करके ही चलना है, क्योंकि हर एक की जीवन शैली अपनी अपनी है, बहनों की अपनी, भाइयों की अपनी। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि इस बात को हमें अनुशासन के रूप में पालन करना है, हर एक की जो अपनी जीवन शैली है वो जाने, उनका काम जाने। और ब्राह्मण जीवन में और कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें पालन करना है? हंसी मजाक, बाबा ने कहा कि हंसी मजाक भी ऐसा ना हो जिसमें विकारों की वास हो, बदबू हो, तो हंसी मजाक भी ऐसी ना हो, अर्थात क्योंकि हंसी मजाक अगर ऐसी होगी तो जो आत्मा में वो संस्कार पहले से भरे हुए हैं वो संस्कार बार बार इमर्ज होंगे, जबकि हमारा लक्ष्य है कि जो पुराने संस्कार है वो संस्कार सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो उसके लिए हंसी मजाक में भी ऐसी हंसी मजाक ना हो जिससे वो संस्कार इमर्ज हो, पुराने संस्कार। साथ साथ और कौन सी बातें? गंभीर और रमणीकता में बैलेंस हो। और विशेष दूसरी बात है कि हम दूसरों को कमेंट वाले शब्द यूज ना करें, क्योंकि जब किसी के लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं जिससे दूसरी आत्माओं को हर्ट फील होता है, तो वो भी हमारे इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं, बाधा बन जाते हैं। तो ये भी एक अनुशासन है कि हम किसी को ऐसे हर्ट करने वाले शब्द न बोले, इसको कमेंट कहते हैं। तो हमें किसी के लिए ऐसे कमेंट वाले शब्द भी यूज नहीं करने हैं, ये भी हमें एक अनुशासन के रूप में इस बात को लेनी है। और समय को हमें वैल्यू देना है, क्योंकि संगम युग का समय ही सारे कल्प में हमें ऐसा एक समय मिलता है जिसमें हम आगे चढ़ते हैं। ये कमाई करने का समय है, ये चढ़ने का समय है। तो इस संगम युग के समय को यदि हम मूल्य देंगे, वैल्यू देंगे, तो हम स्वयं ही वैल्यूवान, मूल्यवान बन जाएंगे। तो समय को भी हमें वैल्यू देना है, समय को भी हमें संयमित होकर के उसका यूज करना है। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अनुशासन ब्राह्मण जीवन में है, उनको फॉलो करेंगे तो हमारे इस जीवन में उन्नति का जो हमारा लक्ष्य है उसमें एक जादू की छड़ी का काम करेंगे। ब्राह्मण जीवन में जो भी हमें सेवाएं मिली हैं, उन सेवाओं में हमें एक्यूरेट रहना है, उनके प्रति निमित्त भाव रखना है, किसकी सेवा कर रहे हैं। और विशेष कर जो हमें अनुशासन का पाठ कौन पढ़ा रहा है, उस बात पर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला जो है वो सिर्फ हमें पाठ पढ़ाता ही नहीं है, वो पाठ पढ़ाने के साथ साथ हमें वो शक्ति भी देता है, हमें बल भी देता है। इसलिए हमें उस बात को ध्यान रखना है कि हमें ये पाठ पढ़ाने वाला कौन है। तो यदि हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो ब्राह्मण जीवन में जो अनुशासन हमें मिले हुए हैं उनके माध्यम से हम तीव्र गति से इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम सहज और सरलता से प्राप्त कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। ओम शांति।